लोग ईद मिलादुल नबी बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं, तो इसको ईद भी कहते हैं। और मेरे भाई का भी मुझे फोन आया, उसने मुझे ईद मुबारक कहा, तो मैंने पूछा कि ईदें तो दो होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल जुहा। तो ईद उल ये जो ईद ईद कहते हैं इसे, ये कहाँ तक इसे कहना ठीक है, हमें इसे ईद कहना चाहिए या नहीं? और नबी पाक को यकीनन पता होगा कि हम मुस्लिम जो हैं वो उनकी मोहब्बत में मगलूब कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तो उन्होंने इसके बारे में क्या ताकीद की थी कि हम इसे किस तरह से मतलब अपने जज्बात का इजहार कर सकें अपने नबी की मोहब्बत में, क्या करें कि जो हमारे लिए उनके अहकाम के अकॉर्डिंग हो, यानी बेस्ट हमारा हो कि उन तक जाए और हमें उसका अजर मिले। तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा रबीउल अव्वल के हवाले से हमें, और क्या मिलाद तो बहुत होते हैं, लोग बुलाते भी बहुत हैं, और फिर उस पर बहुत मुबारकें भी होती हैं, और बहुत ज्यादा दुरूद और सलाम भी पढ़ा जाता है, और बड़ी बड़ी लंबी महफिलें होती हैं, उसकी कहाँ तक क्या हकीकत है, और मतलब हमें क्या इसके बारे में, हम मुसलमानों का क्या रवैया होना चाहिए?
ये वैसे बड़ी फितरी बात है कि जब से दुनिया बनी है लोग अपनी बड़ी शख्सियात के दिन मनाते रहते हैं, और कौमी लिहाज से भी मजहबी लिहाज से भी मुख्तलिफ त्यौहार मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ गिरोहों जमातों और मजाहब में इसके लिए मुकर्रर किए जाते रहे। जैसे क्रिसमस का त्यौहार है, ज़ाहिर है सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइशी की खुशी में ये लोग मनाते हैं, और भी बाज़ वाक़ियात बड़े हो जाते हैं कौमों की ज़िंदगी में उसको भी लोग मनाते हैं, जैसे हम अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, जैसे हम कायदे आज़म का यौम वफ़ात या यौम पैदाइश मनाते हैं, अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश यौम वफ़ात मनाते हैं। तो त्यौहार बनाने की एक अमूमी रवायत दुनिया की सारी कौमों में रही है, ये अपनी जगह कोई बुरी चीज़ नहीं है। इससे तारीखी वाकयात याद रहते हैं, लोगों की एक दिली वाबस्तगी रहती है, और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि आइंदा नस्लों को बाज़ चीज़ें इसके ज़रिए से मुंतकिल होती रहती हैं। तो इस वजह से असलन ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा ऐसा है कि मेरे ख्याल के मुताबिक आप इससे बहुत बुलंद हैं कि आपको इस सतह पर ले आया जाए कि जैसे हम कायदे आज़म का दिन मनाते हैं एक दिन आपका भी मना लें, जैसे हम पाकिस्तान के क़याम का एक दिन मनाते हैं इस तरह आपका भी एक दिन मना लें। आप किसी एक दिन की शख्सियत नहीं हैं, आप तो हमारे शब रोज़ की शख्सियत हैं, और आपकी बेसत आपका नबूवत का मकाम ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिसको याद कराने के लिए मुझे या आपको दिन मना के कोई एहतमाम करना है। उसका एहतमाम अल्लाह परवरदिगार आलम ने इस दर्जे में कर दिया हुआ है कि हर रोज़ पांच वक्त हमारी मस्जिदों से ये सदा बुलंद हो जाती है। तो ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद बहार हो के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए मैं तो इसको पस्ती ज़ौक समझता हूँ, मेरे नज़दीक इसके लिए कोई ख़ास दिन मुंतखब नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि सहाबाए किराम ने इस तरह का कोई काम रसूलुल्लाह सल्लम के मामले में नहीं किया। ये हर रोज़ की शख्सियत है, हर दिन की शख्सियत है, हर दिन आपका दिन है, हर महीना आपका महीना है, मुसलमान के शब व रोज़ में ये याद कायम रहनी चाहिए, और अल्लाह ने इसका बड़ा गैर मामूली अहतमाम कर रखा हुआ है, यानी ये मेरा और आपका मोहताज नहीं रहा। अल्लाह ताला ने जो अहतमाम रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और आपकी रिसालत की बुलंदी के लिए कर रखा हुआ है, उससे बड़ा अहतमाम दुनिया में किसी शख्सियत के लिए हो नहीं सकता। जिस अहतमाम से हमारी हर मस्जिद से ये सदा बुलंद होती है और पाँच वक्त बुलंद होती है, और फिर हम जाते हैं और दुरूद व सलाम का भी इतना अहतमाम कर दिया गया है कि हम अपनी नमाजों में हर तशहुद के मौके पर पढ़ रहे होते हैं। इस गैर मामूली अहतमाम के साथ ऐसी बुलंदोबाला शख्सियत को जिसके कोई मसील नहीं है आम शख्सियात की सतह पर उतारना, ये मुझे पसंद नहीं। तो मैंने इस पर लिखा भी था एक ज़माने में, आप उसको पढ़ सकते हैं, तो मैं तो इसको पसंद नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि इसको ईद कह देते हैं लोग, तो ये अगरचे ठीक है कि हमारे यहाँ ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के लिए ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान के हद तक तो असल में हर त्यौहार ईद ही होता है। यानी अगर किसी मुल्क का यौम आज़ादी भी मनाया जाएगा तो उसको भी ईद ही कहते हैं अरबी में, तो इससे कोई फ़र्क वाकई नहीं होता। जब आपने मनाने का फैसला कर ही लिया है तो फिर कह ले ईद, इसलिए कि ईद तो कहते हैं कि ऐसा त्यौहार कि जो हर साल बार बार आता है, लौटाया जाता है, उससे ये लफ्ज़ बना हुआ है, यानी बार बार आने वाला। तो मैंने अपना रुझान आपकी खिदमत में बयान कर दिया है और मैं इसको पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल में अगर सीरत का बयान होना है तो वो भी हमारे शब रोज़ का हिस्सा होना चाहिए, अगर लोगों को दीन सिखाना है तो वो भी हमारी दिन रात की जिम्मेदारी है। तो ये एक दिन याद करके पैगंबर को आप रख छोड़े یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بلند ترین مرتبے کے شان شان نہیں. میلاد سے کیا مراد ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے کچھ پاکیزہ اشعار پڑھ لیے جاتے ہیں یا آپ کی شان میں کوئی چیز پڑھ لی جاتی ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے منانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں آپ کیا فرما رہے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جس میں کچھ مشرکانہ مضامین ہیں یا نبی کا مرتبہ خدا سے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے یا جھوٹی روایات جس طرح عام طور پر بیان کی جاتی ہیں ہمارے ہاں وہ بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ مجھے تو یہ باقی تو کوئی مولود شریف سننے کا نہیں کبھی سعادت حاصل ہوئی، لیکن بعض میں نے ایسی ٹیلی ویژن کے اوپر دو تین تقریریں سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کیا دنیا ہے جس سے میں تو واقف نہیں ہوں بالکل ہی. یعنی بالکل لایعنی قصے اور بالکل بےمانی روایات، نہ ان کا کوئی سر نہ ان کا کوئی پیر، نہ وہ کہیں قرآن میں ہے نہ کوئی صحیح روایات میں ہے، وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو اگر صحیح آپ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، سیرت بیان کی جاتی ہے یا آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ تعلیمات جو قرآن میں ہیں اور صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، تو پھر کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، ضرور کریں. لیکن یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کسی ہما شما کا معاملہ نہیں ہے. آپ کی طرف نسبت دے کر جو بات بھی بیان کی جائے وہ بات صحیح بات ہونی چاہیے. صحیح سے میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی امکان کی حد تک تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے کیا بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات کے حوالے سے جو بات بھی بیان کی جائے گی وہ لوگوں کے لیے عقیدت کا منبع بھی بنے گی اور اس سے وہ دین بھی اخذ کریں گے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے. تو میں تو بند کر کے بیٹھ گیا، اپنی اس کے بعد نہیں سن سکا جو کچھ بیان ہو رہا تھا، بلکہ بعض قصے میں نے بہت چیزیں پڑھی کہیں اپنے زمانہ طالب علم میں اس طرح کی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اب تو ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی جو اس وقت بھی نہیں سنی تھی.